وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج اور اللہ وہ ہے جس نے ملا دیا دو دریاؤں کو ایک بہت شیریں ہے اور دوسرا سخت کھاری ہے اور ان دونوں کے درمیان وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا اور بنا دی اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے درمیان آڑ اور مضبوط رکاوٹ. اب یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں کیوں جہاد کریں, اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں. دیکھیے کہ دنیا میں کوئی کتنا خوش ہوتا ہے نا کہ مجھے فلاں کی جاب مل گئی, فلاں بڑی کمپنی میں آرامکو میں جاب مل گئی, اس میں مل گئی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم میرے راستے میں نکلو گے تو میں تمہیں بہت اچھی پے دوں گا, اس لیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑیں تو ایک بڑا خوبصورت ربط بنتا ہے, اور وہ کیا کہ عموماً انسان اللہ کا پیغام دینے سے کیوں کتراتا ہے, کیونکہ مخالفت نہیں برداشت کر سکتا. اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں پھر لوگ مائنڈ کریں گے, پھر دوسری بات ہے میری تو انہوں نے ماننی نہیں, اور یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا, اور دیکھو خام خواہ کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو پریکٹیکل مثال دے دی کہ دیکھو وہ ذات مرج البحرین جس نے ملا دیا دو دریاؤں کو. مرج کا لفظ جو ہے آزاد چھوڑ دینے کے لیے آتا ہے, چراگاہ کو بھی مرجا کہتے ہیں کیونکہ وہاں جانور جو ہوتے ہیں وہ آزادی سے چلتے پھرتے ہیں. انگلش میں جو لفظ ہے نا مرج کرنا, دو چیزوں کو جوڑنا, وہ بھی شاید اسی کے ساتھ ہے. دیکھو جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا, ایک ہے حاز عذبن فرات بہت ہی میٹھا ہے, عذب کا لفظ میٹھے کو کہتے ہیں, میٹھا پانی. اچھا یہ بتائیں کہ پھر عذاب کا لفظ کیا ہے, پھر وہ تو بالکل ہی کڑوا ہوتا ہے. عذب ہے میٹھا اور عذاب ہے مٹھاس کو چھین لینے والا, باپ کا فرق ہے صرف. یعنی وہ چیز جو ساری مٹھاس رونقیں لذتیں خوشیاں ختم کر دے گی وہ ہے عذاب. اب آپ بتائیں کوئی عربی زبان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صرف ایک روٹ کے ساتھ آپ مختلف معنی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ محبت آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ ہمیں قرآن پاک پہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو فرمایا حاذا عذبن فرات, فرات کا لفظ جو ہے یہ میٹھے پانی کے لیے آتا ہے, دریائے فرات بھی آپ کہتے ہیں. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹ دینا, توڑ دینا, کیونکہ میٹھا پانی جو ہوتا ہے وہ پیاس کو کاٹ دیتا ہے, نمکین پانی سے پیاس ختم نہیں ہوتی. اور اجاج کا لفظ کڑوے کے لیے آتا ہے, کھاری پانی جس کو آپ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے دو قسم کے دریا پیدا کیے ہیں, ایک میٹھا پانی اور ایک کڑوا پانی والا, اور پھر دونوں کو الگ الگ کیسے کرتا ہوں, وجعل بینہما برزخا, بیچ میں ایک پردہ لگا دیتا ہوں. دنیا میں آج بھی کئی ایسے مقام ہیں کہ جہاں میٹھا اور نمکین پانی ایک ساتھ رہتا ہے. ترکی کے اندر ایک جگہ ایسی موجود ہے خلیج فارس کے پاس, کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ نمکین پانی ہے اوپر, اور تھوڑا سا نیچے کریں تو وہاں میٹھے پانی کے چشمے ہیں جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا, تو جب وہ خلیج فارس کے چشموں سے پانی حاصل کرنے گئے تو بعد میں جب کنویں کھودے گئے تو وہاں سے تیل کے ساتھ پانی بھی نکلا. یہ کس کی طاقت ہے؟ اب اس کا سبق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پیچھے ہم کچھ اور باتیں پڑھ رہے تھے, اللہ کے کلام کو عام کرنے کی باتیں کر رہے تھے, یہاں گڈ مڈ ہونے اور اس طرح کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے کہ دیکھو دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں, کچھ میٹھے اور کچھ کڑوے. کچھ انسانیت کی پیاس بجھا دیتے ہیں اور کچھ تو اور پیاس لگا دیتے ہیں. اللہ کی ذات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ تم میٹھے پانی بنو, یہ انسانیت تمہیں یاد کرے, کل اس کو پتہ چلے اور وہ واقعی کہے کہ یہ خوش قسمت انسان میری زندگی میں آیا تھا جس نے میری جہالت کی پیاس بجھا کے, علم کی پیاس بجھا کے مجھے جاہلیت سے نکال دیا. پھر دوسری بات اس میں دیکھیے کہ ایک اور ہے کہ جب بھی تبلیغ کے لیے آپ نکلتے ہیں یا اللہ کا پیغام دیتے ہیں نا, تو بعض دفعہ بڑے کڑوے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں جب اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں کیوں نہ برا کروں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو دو دریا نمکین اور میٹھا ساتھ ساتھ چلتے ہیں, پھر بھی نمکین کے نمک کی وجہ سے میٹھا پانی اپنی مٹھاس ختم نہیں کرتا. تم بھی لوگوں کے رویوں کے تابع خود کو نہ کرو. جب لوگ تم سے کڑوی کڑوی باتیں کریں تو تم اپنے اعمال نامے کی سلامتی کے ساتھ وہاں سے اٹھ جاؤ, اپنی مٹھاس نہ کھونا کڑووں کے ساتھ. بعض کہتے ہیں میں تو اتنی اچھی ہوتی تھی, یہ انہوں نے مجھے خراب کر دیا, یہ جب سے سسرال میں آئی ہوں یہ انہوں نے تانے دے دے کے میرا بھی اخلاق ختم کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ وجعل بینہما برزخا, तुम भी एक बरजख बना लेते, तुम क्यों बुरे हो गए? आप देखिए, काले कपड़े को आप किसी रंग के साथ पका भी दें तो वो काले ही रहता है। इसके बरक्स सफ़ेद कपड़े को ज़रा सा दूसरा रंग भी लग जाए तो वो फ़ौरन उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब बंदा अपनी आदत में काले कपड़े की तरह पक्का हो चुका होता है ना, कि वो चीज़ इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाए, तो फिर वो कभी भी किसी बुरे माहौल में भी चला जाए, वो अपना असर ख़त्म नहीं करता। तो कहा कि तुम भी बुरे हालात में अच्छे बनो। बाज़ कहते हैं, मैं तो बड़ी खुश मिजाज थी, हालात इतने बिगड़े कि मेरा मिजाज तलख हो गया। नहीं, दीन का काम करने वालों की तलखी नहीं चलेगी। उनके मिजाज में अगर तलखी है, अगर उसको दीन के लिए ठंडा करें, हाँ उनके अंदर सख्ती आएगी, वो असूल मनवाएंगे, गुस्सा करेंगे, क्यों? तरबियत के लिए। लेकिन सच्चे मोमिन का मिजाज सख्त नहीं होता। हाँ, उसकी आवाज़ सख्त हो सकती है, उसके असूल सख्त हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा नमक लगाना पड़ता है गोश्त को गलाने के लिए। ये जो लफ्ज़ है ना, उजाज, इसका रूट नोट कर लें, हमज़ा जीम जीन। असल में नमक ही जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कड़वा हो जाता है, उसी से ये लफ्ज़ इसमें आ जाता है। आप देखिए कि सूरत का नाम है फुरकान, और यहाँ मुतज़ाद चीज़ें पेश की जा रही हैं। हक क्या है? कड़वा। बातिल क्या है? मीठा। हक को छोड़ के बातिल ले लें? नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हक मुर्रा, सच तो कड़वा ही होता है, तो फिर छोड़ना लेना पड़ेगा। असल में यह मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो असिमिलेट कर लेते हैं ख़ुद को कुफर के तौर तरीकों के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान मशरक में जाए कि मगरब में, नॉर्वे में रहे कि अमेरिका में, पाकिस्तान में रहे या चाइना में, वो असिमिलेट नहीं होगा, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेगा। इंसान भी तो पानी से बना है ना, इसीलिए कुछ इंसान मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। बस दफ़ा एक घर में रहने वाले दो लोगों के मिजाज में कड़वे और मीठे का फ़र्क होता है। शोहर इंतहाई नरम मिजाज है, बीवी इंतहाई कड़वे मिजाज की हैं, और बाज़ दफ़ा उसका अपोजिट भी होता है। कहते हैं, हम नहीं एक दूसरे के साथ रह सकते। रह सकते हो, हिजरम महजूरा, एक रुकावट रखो, एक झिझक बना के रखो कि दूसरों के साथ गलत तरीका ना रखो। आप देखिए कि आप मिसाल ले लें मक्का वालों की, 13 साल मुशरिकों में रहे ना, कड़वे हुए, क्या उनका असर कबूल किया? याद रखिए कि हक थोड़ा भी होगा ना तो निथर कर सामने आ जाता है। असल यह है कि लोग अपने आप को उस पर कायम तो रखें, तो कहा कैसे लोग फिर सबक ले सकते हैं। और वहुवल्लज़ी खलक मिनल माई बशरन, और वही तो है जिसने पैदा किया इंसान को पानी की बूंद से, एक बशर बनाकर, फजालहु नसबं वसिहरा, और उसे ख़ानदान वाला और ससुराल वाला बना दिया। कैसे कर दिया? कवकान रब्बुका कदीरा, और आपका रब बड़ी कुदरत वाला है, उसके पास बड़ी कुदरत है इस बात की। यहाँ से आप देखिए कि पहले कायनात के अंदर फैली हुई निशानियाँ बताई गई, और अब यहाँ से अनफुस की निशानियाँ बताई गई, इंसानों के अपने नफ्सों में क्या कुछ है। यहाँ दो रिश्तों की बात आई है, नंबर एक नसबन और एक सहर। अगर हम देखें तो इंसानों के रिश्ते जो होते हैं वो दो तरह के ही होते हैं, एक है नसब का रिश्ता और एक है सहर का रिश्ता। नसब का रिश्ता फिर दो हिस्सों में बंट जाता है, ननिहाल और ददियाल। ननिहाल होता है माँ की तरफ से, ददियाल होता है बाप की तरफ से। पीछे बार बार जिक्र आया वल अक्रबीन, ज़िल क़ुरबा। तीसरा जो रिश्ता होता है ना, ये सहर का होता है। सहर कहते हैं उस रिश्ते को जिसमें बीवी या शोहर आ जाए, यानी कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी ससुराल का ताल्लुक आएगा। अब सहर को सब्र से याद कर ले, सब्र के रिश्ते होते हैं ये। ससुराल का लफ्ज़ कहते ही, बोलते ही, सुनते ही अक्सर लोगों के मुंह से आह निकल जाती है ना। अफसोस की बात कि आज के दौर में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों के ताल्लुकात दूसरों से बड़े अच्छे, सोसाइटीज़ के अंदर रहने में वो बड़े खुश अखलाक, महफिलों की जान, लेकिन ससुराल के लिए वो नाकाबले बर्दाश्त। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा हाल होता है कि ससुराल क्या सास का नाम सुन के सांस उखड़ने लगती है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, ऐसा होता है? कांप रहे होते हैं। आज ऐसा क्यों नहीं लगता है हमें कि हमारे रिश्ते हमारे लिए पुलसरात बन गए, बाल से बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़? आजकल ऐसा नहीं दिखता आपको कि ससुराल के साथ ताल्लुकात अमूमन कशीदे ही रहते हैं? अच्छा, अजीब बात है, हैरत की बात है, लड़कों के ताल्लुकात अपने ससुराल से अक्सर अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके आने पे सास ने बलाएं लेनी है, जाने पे लेनी है, उसके आने से पहले उसकी पसंद की चीज़ें पकाई हुई हैं। लेकिन लड़कियों के ताल्लुकात अपने ससुराल से बड़े ख़राब होते हैं। तो आइए जरा इन आयतों की रोशनी में हम भी देख लें कि फिर ससुराल के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि अजनबी लोगों के साथ ना तो हमारा इतना गहरा ताल्लुक होता है, ना इतनी बेतकल्लुफी होती है, ना अजनबी हमारे लिए इम्तिहान का सबब है, ना आजमाइश का, ना दिल टूटता है। ये सारे फैक्टर जो हैं ये करीबी रिश्तों में आते हैं। अब चूंकि ससुराल के रिश्ते में ज़रूरी ऐसा होता है कि इंसान किसी को या तो छोड़ के आया होता है, ज़ाहिर है कि बीवी है तो मैके को छोड़ के ससुराल में आई हुई है, और इसके अपोजिट दूसरी तरफ भी है कि अगर शौहर है तो पहले सारी ज़िंदगी उसने उनको देखा भी नहीं, अब उनको भी उसको खुश रखना है। तो इसके लिए हमारे यहाँ अमूमन कुछ एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। बस दफ़ा दामाद के नाम पे दामाद को जो है वो शेर बना लिया जाता है, और दामाद का नाम सुनते ही ससुर भी कांपने लगते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। मैं औरतों की बात से पहले मर्दों की इसलिए कर रही हूँ कि ससुराल का ताल्लुक बहरहाल मर्दों के साथ भी होता है। नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई जब किसी की बहन या बेटी से रिश्ता कर ले, खुलासा है ये हदीस का, तो उनके सामने अपने आप को ऐसे महसूस कराए जैसे किसी सदका लेने वाले के सामने होते हैं। हदीस कुछ इस तरह की है कि बेहतरीन सदका क्या है कि कोई किसी की बहन या बेटी को अपने निकाह में ले ले। तो फिर मुहद्दिसीन उसकी शरह में ये बताते हैं कि दामाद या बहनोई कह लें अपनी ज़ुबान में, उसको अपने ससुराल के साथ इस तरह हम्बल रहना चाहिए कि आपने अपना प्यारा कीमती टुकड़ा मुझे दिया। अब ये बात किसी को बताई जाए तो मानने वाले कितने हैं? ये जो दामाद धमकियां देते हैं बात बात पे तलाक की और आडो घड़ी मांगते हैं, वजह क्या है? वो ढूंढे कौन से जिनके साथ जाहे तुम भी जिहादन कबीरा की जरूरत थी। गलत लोगों से ताल्लुक जुड़ते हैं तो इसी तरह की कहानियाँ होती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि मर्द के ऊपर भी जिम्मेदारियां आती हैं एक अच्छे ताल्लुक की बुनियाद पे कि शादी के बाद अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा ताल्लुक रखे। लेकिन अमूमन ये बिगाड़ आता है औरतों के ताल्लुकात में। अब देखिए कि अमूमन शादी होती है जब हमारे कल्चर में तो सिर्फ लड़के के साथ ताल्लुक नहीं होता, घर वाले भी होते हैं, और ये होना चाहिए क्योंकि वो क्या लड़की है कि जिसके लाड़ देखने के लिए ना सास है ना नंदे हैं, और वो लड़का क्या लड़की को खुश रखेगा कि जो कल तक तो उसके लिए बहुत कुछ था अब सिर्फ उसका बॉस बन गया शौहर की सूरत में। वो लड़कियां कभी भी खुश नहीं रहती, या वो एक बहुत बड़ी चीज़ मिस करती हैं जो अपने ससुराल को नहीं पाती। कई ऐसे हालात बन जाते हैं कि शादी के बाद डायरेक्ट लड़के के पास लड़की को जाना पड़ता है या होता ही कोई नहीं है ससुराल में। यकीन करें कि वो औरतें बहुत बड़े प्लेयर से महरूम हैं। वो सास के चाव, वो लाड, वो नंदों के कपड़ों को इसरी करना और वो उनको भाभी को सजाना संवारना, इससे मोहब्बत आती है। लेकिन ये ताल्लुकात बिगड़ते कब हैं? पहले हम इसको ससुराल की तरफ देख लेते हैं कि सास का क्या दखल होता है ताल्लुकात को सही रखने में या ख़राब रखने में। एक बहुत बड़ी वजह यानी 4-5 वजूहात बताती हूँ कि क्यों अक्सर सासें अपनी बहुओं को खुश नहीं रख पाती। पहली वजह तो यह है कि वो अपनी बहू को 20 साल की लड़की समझने की बजाय 40 साल की तजुर्बाकार औरत समझने लगती हैं। जब ढूंढ रही होती हैं तो कहती हैं कि परी लाऊंगी, काम उससे औरतों वाले करवाना चाहती हैं। 16 साल की चाहिए, दुबली पतली चाहिए, और काम करने से पहले वो थक जाएगी तो कहेंगे आजकल की लड़कियां काम ही कुछ नहीं करती, जान ही नहीं है इनके अंदर। ये एक बहुत बड़ी कमी है। अगर आप में से भी कोई सास बन जाती है या बनने के करीब है तो लिख ले कि जो लड़की आएगी वो 20, 22, 15, 16 साल की एक कच्ची लड़की है। अगर आपने कच्ची कली तोड़ी है तो उसके फूल बनने का इंतज़ार तो करें, आप सिखा लेंगे उसको। फिर दूसरी जो एक बहुत बड़ी ख़राबी सासों में देखी गई वो क्या है कि वो चाहती क्या है कि बहू बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी बन जाए हर बात में। मेरे बच्चे तो नहीं रोते थे, मैंने तो बच्चों को ऐसे नहीं पाला, तुम्हारे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे, मैं तो ये करती। अब जब हर वक्त मैं करके उसको अपनी खूबियाँ सुनाते हैं ना तो बात वह चिड़ में भी औरतें नहीं करती। हालात बदल गए, तरबियत के अंदाज बदल गए। कभी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अपना जिक्र ना करें कि मैं ऐसी थी मैं वैसी थी। हाँ कर सके तो अपनी सास की बातें करें कि वो मेरे साथ कैसी थी। फिर एक और वजह क्या होती है, तीसरा बहुत बड़ा एक नुकसान जो हमारे हाँ ससुराली ताल्लुकात की खराबी में, वो क्या है कि ला तो कहने को बहूरे होते हैं और ला शौर में होता है कि अनपेड मेड आ रही है, सर्वेंट कमा रही है। वो किसी की बात सुनी तो उन्होंने कहा मुन्ने के अब्बा काम कर करके थक जाती हूँ, अब कर लो बेटे की शादी। यानी मीन क्या, मैं थक गई अब कोई और आए। तो याद रखें कि बहू मेड नहीं है, कनीज नहीं है, वो आ रही है तो अच्छी बात है। ये एक फर्क नोट कर लें, फिर इसकी डिटेल्स करना चाहे बाद में जाके करें। एक चौथी खराबी की वजह क्या होती है कि कहते क्या हैं कि हम बहू ला रहे हैं, या दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं कि हम बेटी ला रहे हैं, यानी बहू को बेटी समझ लेते हैं हम। ये लिखें आप तो गलत कहेंगे कि पता नहीं मैंने गलत कह दिया। हमारे यहाँ मुँह में कहते हैं जी ये बहू नहीं, हम तो अपने घर में बेटी लेके जा रहे हैं। तो लिख लें कि बहू बेटी नहीं होती, बेटी बेटी होती है। कैसे? मसलन आपकी बेटी जो आपके ख्याल में अब छोटी सी गुड़िया है या बड़ी हो रही है, क्या वो ऊपर से खूब अच्छे कपड़े भड़कीले पहन पुन के आई पोनी करके, आप कहते ये क्या पहन के आ गई हो, चलो इसको बदलो, ये कोई अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या किया है, ऐसे काम करते हैं। आपकी बेटी है वो सुन लेगी आपकी बात। आप अपनी बहू को अगर इस तरह टोकेंगे ना तो वो माइंड करेगी, क्योंकि बेटी नहीं है। अल्लाह ने जो छोटी सी बच्ची आपके हाथों में इतनी बड़ी की है वो आपकी ज्यादा सुनेगी। तो जिस तरह बेटियों के ऊपर रोक टोक हम करते हैं ना अमूमन ख़वातीन, आजकल कहाँ करते हैं लेकिन जब करते थे, तो बहू पे वो नहीं हो सकती। ये गलत फहमी है, यकीन करें। ये चेकलिस्ट बना के रख लें अपने पास, अपने अमल को हर दिन चेक करें कि क्या मैं अपनी भाभी के साथ ऐसे हूँ। रिश्ते वही होते हैं जो अल्लाह ने बनाए। बहू का रिश्ता बुरा नहीं है, खराब नहीं है, वो बेटी से भी बढ़ के है, बहू बहू है। नहीं आप बेटी बनाएंगे फिर आप उसे लाड करेंगे, कभी बेतकल्लुफ होंगे, कभी रोक टोक कर देंगे, वो दुरुस्त तरीका नहीं होता। फिर एक अगली वजह जो होती है अमूमन खराबी की, वो क्या है कि सासें जब बहू को लेके आती हैं ना, तो वो ये सोच के पहले तो लाती हैं कि ला रहे हैं 6 भाइयों की अकलौती बहन, ताकि 6 की 6 ही इसको तोहफे देंगे और जहेज देंगे। लेकिन वो 6 में से जब कोई आ गया उसके पास मिलने, कहते हैं तुम्हारे तो पिछले की काम नहीं खत्म होते, ये तुम्हारे मैके वालों ने कब जान छोड़नी है। यानी बहू को लाते हुए ये सोच लेते हैं कि इसके पिछलों से ताल्लुक खत्म, ये लवारस लानी थी हमने। बस सासें अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको सबको लेन देन खिलाने पिलाने में दिल खुला होगा, जहां बहू के मैकों की बात आएगी वो हाथ खींच लेगी, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। फिर बस चीजें शौहर बीवी के ताल्लुकात में खराबी की जो होती है, उसमें भी सासें बाज दफा गलत किरदार अदा करती हैं। सासों के नाते से एक और अगला नुकता हम नोट कर सकते हैं कि बास माएँ जब अपने बेटों की शादी करती हैं तो ये भूल जाती हैं कि अब उसकी ज़िंदगी में एक और औरत आ गई है। कल तक तो ऐसे थे, पहले तो सीधे इधर आते थे, अब कमरे में जाते हो, अब तो ये हो गया, अब तो मेरे पास बैठते ही नहीं। रियलाइज़ नहीं करती औरतें कि अब हम अपने बेटे को शेयर करेंगे, या मैं ज़्यादा आगे नहीं जाती इसलिए कि फिर आगे भी जाना है हमने। इस पे एक अलग लेक्चर मौजूद है अगर आप सुनना चाहें आप। लेकिन यकीन करें कि जब दिल घुटे होते हैं ना तो रिश्ते नहीं निपते। चलिए आप दूसरी तरफ ले आइए बहू को। बहुओं की खराबियाँ क्या होती हैं, क्यों ससुराली ताल्लुक अच्छे नहीं होते? पहली बात है कि बहू जो है वो घर को होटल समझ ले, वो ये सोच ले कि शादी मेरी इसलिए हुई है कि मैं अब बस अच्छे कपड़े पहनूं, जेवर पहनूं और अपना पर्स पकड़ूं और सारा दिन ड्राइवरों के साथ बाहर और गलियों में रहूं और रात का और मेरे लिए सब कुछ तैयार हो। यानी जब लड़कियां अपने घरों को 5 स्टार होटल समझ लेती हैं ना, तो खराबियां पैदा होती हैं। और ये सोचना कि मुझ पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं तो किसी की खिदमत ना करूं, मैं तो ये कर नहीं सकती। और आजकल लोगों को दीन का ये वर्जन भी समझ आ गया है कि जी बहू का तो कोई फ़र्ज़ ही नहीं है कि तो वो खिदमत करे और क्या ना करे। और नतीजा क्या होता है कि ऐसी बहुएं जो होती हैं बस दफ़ा अपने ससुराल की खिदमत भी नहीं करना पसंद करती। मैं 2 रिवायतें आपके सामने रखती हूँ जिससे आपको बहुत वाज़ इशारा मिलता है कि किस तरह से इस्लाम औरत को सिखाता है। एक रिवायत है तिरमिज़ी की, कबशा बिनते अकाब बिन मालिक कहती हैं कि अपने ससुर अबू कतादा के लिए वुज़ू का पानी मैं लेके आई तो बिल्ली ने मुंह डाल लिया, तो ये समझी कि पानी नापाक हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं फ़िक्र नहीं करो कि बिल्ली नजस नहीं होती, मैंने नबी सल्लम से ये बात सुनी है। इस हदीस से क्या पता चलता है कि ससुर की खिदमत कर रही थी ना। फिर एक और हदीस है हज़रत जाबिर की, तवील रिवायत है कि नबी सल्लम को जब पता चला कि वो शादी करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो आपने कहा कि तुमने किससे शादी की, तो कहने लगे कि बड़ी उम्र की लड़की से की है। तो आपने कहा क्यों, तुम कंवारे थे, किसी कंवारी लड़की से करते, छोटी उम्र की होती, तुम खुश होते उससे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरी 6 बहनें हैं, तो मैं अगर एक और लड़की छोटी ले आता तो बात ना बनती, मैं बड़ी उम्र की औरत से शादी की जो इनका भी ख्याल रखे। तो अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया। आप देखिए कि क्या जो इस्लाम हमसायों तक के हकूक बताता है, क्या दूसरे कमरे में लेटी हुई बूढ़ी सास की खिदमत करने का हुक्म नहीं देगा? जो लड़की अपने ससुराल वालों की खिदमत करती है फर्ज समझ के ना करे चले, सिला रहमी हकूकुल इबाद के तौर पे कर ले, क्या अल्लाह उसको अजर नहीं देगा? बिल्कुल देगा। हाँ, कोई मर्द तलाक नहीं दे सकता अपनी बीवी को इसलिए कि वो माँ की खिदमत नहीं करती, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी लड़की जो है वो अजर पाएगी। इस तरह की चीजों से ताल्लुकात खराब होते हैं। जब हम लेने वाले बनते हैं, देने वाले नहीं बनते, तो उससे खराबी आती है। और मैं तो 100 बातों की एक बात अक्सर कहा करती हूँ। कई दफ़ा ऐसे शादियों के दर्स दिए हैं कि जहाँ बच्चियों की शादी होनी होती है, फिर लोग बुलाते हैं कि चलें कोई दर्स करें। तो मैं कहती हूँ कि हमारी ससुराली जिंदगी, क्या इज्तमाही जिंदगी के 60-70% जो मसाइल हैं, सिर्फ एक जुमले पे अमल करने से हल हो सकते हैं, और वो क्या है कि जुबान छोटी दिल बड़ा। बस दिल बड़े रखें, करते हैं आपकी चीजें इस्तेमाल करने दें, खा जाते हैं आपके हिस्सा खाने दें, दिल बड़ा रखें और जुबान छोटी रखें। और जब इसका बरक्स होता है तो जिंदगी अजीरन होती है। ये प्यार के रिश्ते हैं, ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, इनको मोहब्बत के ही रहने दें। वही औरत थी जो आपको ढूंढने आई थी, आज वो आपको नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। फिर इसी तरह बिगाड़ की वजह जो होती है औरतों की साइड से, वो ये है कि बीवियां अपने मैके के साथ ताल्लुक उसी तरह का रखना चाहती हैं शादी के बाद भी जो शादी से पहले था। हर बात पे माँ, हर बात पे माँ का मशवरा, फोन है तो माँ के साथ हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। फिर बाज दफा लेन देन में, बाज बहुत सारे घरानों में जो ताल्लुकात बिगड़ते हैं ना ससुराल में जाके, वो मैके को देने से में बिगड़ते हैं। मर्द भी चाहता है कि बीवी मुझे बता के दे, कभी छुपा के दिया। यकीन करें आप, शादी के सिर्फ 2 साल, 1 से 2 साल चुप करके देते रहे, फितरत के असूल पे आ जाए। आप बारिश बने, आप ओस बने, पत्ते दरख्त सूरज चांद सब दे रहे हैं ना, आप सही मुस्लिम बन जाए, आप देने वाले बन जाए, सारी जिंदगी लेंगे आप मर्द का एतमाद ले लें, कभी पूछेगा भी नहीं आपसे। सास का एतमाद ले लें, वो अपनी चाबियां खुद आपको अपने हाथ से देगी। आप एक दफा अपने दिल को बड़ा रखें, यकीन करें बहुत कुछ आएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुछ घरेलू बिगाड़ इस तरह के होते हैं। मसलन बहू कहती है कि ये मेरा घर है, क्योंकि माँ कह रही थी अपने घर में जाके मर्जी करना, यहाँ आए तो सास का घर है, अब क्या करें, किसका राज चलना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर ससुर का खर्चा है ना घर का, ससुर घर का खर्चा चलाते हैं, तो अपर हैंड सास का होना चाहिए, खाने में पकाने में जो भी है। और बहू का जो रोल है वो एक हेल्पर का होना चाहिए। दूसरी सूरत है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माएँ अपने बेटों के घरों में रहने गई होती हैं, मियाँ बीवी पहले से रह रहे थे, वो प्यार में मोहब्बत में सास को भी पास बुला लेते हैं कि अम्मी जी आप भी हमारे पास आके रहें। अब ऐसी सासों को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये मेरी बहू के बेटे की कमाई है, उसका घर है, वो खुश रहे। छोड़े आपने क्या करना है, इतने साल आपने घर चला लिया ना, कुछ मसरूफियत करें। फिर टोका टाकी करना, तुम जाया करती हो, तुम गिराती हो, इतना क्यों पकाया, गोश्त क्यों पकाया, कल भी आपके जाने के बाद उसने ही करना है अगर वो आपके पास हो। और जो बहू घर का काम नहीं करती, उसको भी कान से पकड़ के ले आए, कुरान में ले आए, मैं तुम्हारा काम करूंगी, तुम पढ़ो। यकीन करें मैं ऐसी सासों को जानती हूँ। शादी के बाद यूं अपनी बहुओं को वो पढ़ा रही थी, कहती कि मैं बच्चों को उनके रखना, उनके कामों को करना, कि तुम पढ़ो, बल्कि वो कहती हैं कि मेरी बहू पढ़ के आने वाली होती है, तो मैं उसके लिए टेबल लगा के बैठी होती हूँ, फिर वो आ जाती है, फिर मैं उसकी बच्ची को भी रखती हूँ कि जाओ तुम सो जाओ, तुम थकी भी आई हो और तुमने कल का भी पढ़ना होगा। फिर उसके मियाँ के आने के वक्त वो कहती है फिर तुम आओ चलो किचन में कुछ करो, कि मर्दों को अच्छा लगता है कि लड़कियाँ भी साथ काम करें। कॉपरेशन, आप समझिए एक दूसरे के हालात को, इंशाल्लाह होगा। फिर बात जगह ज्वाइंट होता है, सभी घर वाले मिल रहे हैं तो बांट लीजिए, एक अच्छा काम करती है दूसरी अच्छा करती है, लेकिन ना तो अपनी बहुओं से कॉम्पिटिट करें। बात सबसे कॉम्पिटिशन बहुत करती हैं, वो उनके साथ सजती हैं। मैंने तो हैरान होगी सुन के कि किसी ने अपने बेटे की जब शादी के में दुल्हन का जोड़ा बनाया तो वैसा अपना भी बनवाया, तुम्हारे अब्बा तो ऐसा लाए नहीं है, मैं तो पहनूंगी। सासे भी तैयार होती हैं, फिर कौन उनको बूढ़ा समझ के उनकी खिदमत करे। तो वो अब 20 साल की लड़की, आप माशाल्लाह 50 से ऊपर की हो चुकी हैं, तो आप अब वो खूबसूरत नहीं रही, रियलाइज कर लीजिए। यकीन करें मैं देखती हूँ, जब भी सोशल डिसऑर्डर देखती हूँ ना, हम सब कुछ बच्चियों को सिखा देते हैं लेकिन ससुराल को हैंडल करना नहीं सिखाते। इतना आसान है, इतना आसान है, आप एक स्माइल से वो काम करवा सकते हैं जो बाज़ दफ़ा आप बड़े बड़े दावे करने से नहीं कमा सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें ससुराल के हक भी बता दिए थोड़े से, और का वकाना रब्बू का कदीरा, तुम्हारा रब कादिर है। और साथ ही देखिए अगली आयत में बता दिया कि अब ससुराल की इबादत ना शुरू कर देना, ससुराल का नाम ले लेकर गलत काम भी जायज़ करो, खिदमत करो, اطاعت کرو لیکن عبادت کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان بتوں کو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. نا ایسے سسرالوں کو پوچھتے لوگ ساری زندگی ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. یہ بھی تو پوجا آ گئی. کہا نہیں کرو, کچھ نہیں ملے گا ادھر سے. اللہ کو راضی کرو گے سب تم سے راضی, اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں کوئی تم سے راضی نہیں رہے گا. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے. ظہیرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مدد کرے. مراد کہہ کہ کافر کے طور طریقے, اس کی زندگی, اس کا جینا مرنا جو ہے وہ سارا اللہ کے خلاف ہوتا ہے, مقابلے پہ آ جاتا ہے, یہ باغی ہو جاتا ہے. ہر کافر اپنے رب کے مقابلے پر باغیوں کا مددگار ہوتا ہے. اللہ کے قوانین کو, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بجائے شیطان کے کاموں کو بلند کرتا ہے. وہ ایسے سیٹ اپ بناتا ہے ایسی زندگی کے کہ جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو, گھر ٹوٹے, اور جس کے نتیجے میں پھر زندگی کے اندر سے خوشی ختم ہو جائے. اور پھر سبق کے بالکل آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. یعنی آپ کا کام منوانا نہیں, پہنچانا ہے. پہنچا کہ نہیں پہنچا, آپ نے پہنچا دیا. جب میل مین میل ڈال جاتا ہے نا باکس میں, اس کی ذمہ داری ختم. بعد میں بچے پھاڑ دیں, اس کے اندر بارش کا پانی پڑ جائے, گم ہو جائے, تو اس نے اپنے پیپر پہ لکھ لیا کہ ڈیلیورڈ. بس ڈیلیورڈ. وما ارسلنا کا, ہم نے بھیج دیا, آپ نے ڈیلیور کیا. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اور آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ کام, یہ اللہ کا دین, یہ کوئی پیسے کے لیے نہیں کر رہا میں تمہارے پاس. ہاں باقی تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. میری اجرت تو یہ ہے کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے رب کا راستہ اختیار کر لو, عمل کر لو جو بتاتا ہوں. یہ فائدہ دے دو مجھے کہ تم اچھے کام کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ. مجھے اس سے زیادہ تم سے اور کچھ نہیں چاہیے. میں جو جاہد ہوں بھی جہاد ان کبیرہ کی کوشش کرتا ہوں, یا میں تمہیں مکہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کے پیغام دیتا ہوں رب کا, یا طائف میں جاتا ہوں, تو میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ. یقین کریں یہ ہے تبلیغ کا بنیادی نقطہ کہ لوگ رب سے جڑ جائیں. اَن یَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. آپ کا کام, میرا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات ان کے رب سے کرا دیں, باقی کام اللہ خود ہی کرا لیتا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں بلانے والوں کو کچھ اندیشے ہوتے ہیں. تو کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. پھر توکل کیجیے اس ذات پر جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آئے گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور تسبیح بیان کیجیے اس کی حمد کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا, اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے. اس کو پتہ ہے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں, بڑا کچھ لے کے آئے ہوتے ہیں گناہوں کی پٹاریاں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. آپ کا کام, میرا کام لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں ہے, ان کے گناہوں پہ ان کو رسوا کرنا نہیں ہے. کام کرتے جائیں, باقی جس کے جو گناہ ہیں ان کا رب جانے اور وہ جانے. اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے, کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے برعکس کرسچینٹی میں کیا ہے, کنفیس کرو. ان کے پاس آج بھی پریسٹ کے پاس جا کر پیسے دے کر پارڈن خریدنی پڑتی ہے. کوئی $500 کی پارڈن خرید لے, کوئی 1000 کی خریدے, کوئی 200 کی. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پادری کے پاس لوگ جاتے ہیں, پھر اس سے سامنے پورا اقرار جرم کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دن یہ کیا, فلاں رات یہ کیا, یہ پیسے لے لو اور میرے لیے معافی دے دو. تو وہ لکھ کے پرچے دیتے ہیں. اسی کی کوئی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں میں بھی دیکھی گئی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اجازت ہے یہ سورت پڑھنے کی, یہ وظیفہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے. کبھی سنے؟ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ وظیفہ آپ نے دوسروں کو دیا, مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں. تو وہ پھر جو عالم صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو بھی اس کی اجازت ہے. تو اجازت تو مل گئی تھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد. تو لہٰذا اللہ بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے, اسی لیے اپنے گناہوں کی تشخیر نہیں کرنی چاہیے. کوئی غلطی ہو جائے ماضی میں حال میں, تبدیل کیجئے, معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں, دوسروں کو نہ بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے گناہ کو چھپایا رات کو اور وہ صبح اٹھ کے دوسروں کو خود ہی سنا رہا ہے. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. أركانسيزات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिनों में, फिर सुमस्तवाल अर्श, फिर वो मुतमकिन हुआ, फिर उसने करार पकड़ा अर्श पर, यानी जैसे उसकी शान है। कौन है वो? अर्रहमान, वो रहमान है। फस अलबिही खबीरा, और इसके बारे में पूछना है तो किसी इल्म वाले से पूछो, वाकफ हाल से पूछो। ये काफिर क्या जानेंगे रब को, ये मुशरिक क्या उसकी कदर जाने, उसकी शान, उसकी रहमत उसको पूछो जो उसके रास्तों में चला हुआ है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लम कहा करते थे कि अल्लाह तेरी वैसे तारीफ है जैसे तूने खुद अपने लिए की, अंत कमसनतई तआला नफसिक, अल्लाह जैसे तो अपनी नफ्स की शान बयान करता है मैं तेरी वही शान बयान करता हूँ। तो यहाँ पे बात पूरी हुई। अगला पूरा लेसन जो है वो रहमान और रहमान के बंदों पे है। दुआ करें कि अल्लाह हमें उस रहमान के साथ जुड़ने वाला बना दे और उसी की बताई हुई बातों को हम अपनी ज़िंदगी के लिए मिशल राह बनाते हुए चल सकें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا